भारत ने कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। गुरुवार को इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा
कि देश की एक उपलब्धि है। देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का, जिन्होंने आगे आकर वैक्सीनेशन करवाया भी और इस महामारी के समय करोड़ों जिंदगियां बचाने का काम भी हुआ। दुनिया भर में 100 करोड़ का यह आंकड़ा पार करके भारत ने दिखाया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। बर्फीले पहाड़ हो, नदियों को पार करने का काम हो, समुद्र के पास भारी बारिश में भी ये काम करने का काम किया हो।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है।
16 जनवरी 2021 को भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हुआ और सबसे तेज गति से चलने वाला टीका अभियान शुरू किया। और आज 21 अक्टूबर को भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के अथक परिश्रम से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार करके एक नया कीर्तिमान रचा है। पूरे यूरोपीय संघ में अब तक कोविड वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए थे, उससे भी कहीं अधिक टीके भारत में लगाए गए हैं। अमेरिका के कुल वैक्सीनेशन से लगभग 2.5 गुना अधिक।
टीकाकरण अभियान को लेकर विपक्ष की भूमिका की आलोचना करते हुए जेपी नड्डा कहते हैं,
भारत में ये नहीं हो सकता है से लेकर यह हम कर सकते हैं और ये होकर रहेगा का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन तमाम बाधाओं को और चुनौतियों को पार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देशवासियों को यह एहसास दिलाया है कि अगर 130 करोड़ के देशवासी ठान लें तो भारत कदम कदम पर सफलता के नए अध्याय जोड़ सकता है और देश को हर मुश्किल से निजात दिलाई जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि तय समय में वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं था और वे लगातार इस प्रक्रिया को हतोत्साहित करने में लगे हुए थे, लेकिन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए हमने ये मुकाम हासिल किया है।
100 करोड़ टीके की उपलब्धि हासिल करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। सरकार को उसका वादा याद दिलाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पूछते हैं,
31 दिसंबर 2021 तक मोदी जी ने कहा है कि सब व्यस्क यानी एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों टीके लग जाएंगे, तो 70 दिन आज बचे। 70 दिन में उन्हें 32 करोड़ लोगों को दो टीके और 42 करोड़ लोगों को एक टीका, यानी 106 करोड़ टीके और लगाने, तो उन्हें हर रोज 151 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने चाहिए। पर पिछले 6 दिन की अगर आप एवरेज देखें, 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की, तो वो एवरेज है 39 लाख प्रतिदिन। तो मोदी जी ये भी बता दें, पीठ थपथपाने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बता दें कि 70 दिन में 106 करोड़ टीके कब और कैसे लगाएंगे, देश जानना चाहता है।
इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में जेल के अंदर हैं। उनकी जमानत कई बार नामंजूर की जा चुकी है। यह मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स विभाग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक का दावा है कि जांच अधिकारी समीर वानखेड़े जानबूझकर बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक कहते हैं,
रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से, दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई, कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी, अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या, क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी, क्या कारण था वो वहां गए।
समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि जानबूझकर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। समीर कहते हैं कि आज तक वह दुबई गए ही नहीं हैं।
दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ, ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है ये।
विपक्षी दलों का आरोप है कि एनसीबी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एनसीबी ने ऐसे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि वह अपना काम ईमानदारी से कर रही है। और अंत में थोड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी भाजपा सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई तक के मोर्चे पर सरकार को घेर रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सबको परेशान कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी के अपने तर्क हैं।
आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।
बहरहाल महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों को ज्यादा भरोसा नहीं है। इन दिनों जाति और धर्म से जुड़े भावनात्मक मुद्दों पर सभी पार्टियों का जोर है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।